न शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। अंगश्यामलीं छटाभिरभितो मन्देकतेन्दीवरम् जडञ्जागुडरोचिसङ्ग विदधतङ्ग पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं मृदुलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेम दाम। हम लोगों ने कालिय पर भगवान की कृपा का वर्णन किया, तत्पश्चात काली पर कृपा करने का और कोई कारण नहीं था, अहेतु की कृपा केवल नाग पत्नियों के संबंध से ही भगवान ने उसके ऊपर में कृपा की। और इसके पश्चात में वो शरद ऋतु का वर्णन आया, सारे सरोवर नदियां तालाब कुंड सब निर्मल पानी हो गया, मटमैला पानी बंद हो गया, झुंड के झुंड पक्षी कलरव करने लगे, दिन में कुछ तेज धूप और रात में चंद्रमा की सुशीतल रोशनी आने लग गई, और वनों में काश के फूल खिलने लगे। ये सब शरद ऋतु का वर्णन है। इत्थं स्वरत छच्च जलं पद्माकर सुगंधिना नमसत वायुना बातम स गो गोपालको अच्युतः। कृष्ण जब वृंदावन बहुत सुहावना हो गया, नदियों के जल स्वच्छ हो गए और कमल के फूल सब खिलने लग गए, और उसे सुगंधित वायु चारों तरफ ब्रजमंडल में प्रवाहित होने लगी, उस समय कृष्ण अपने सखाओं को कोटि कोटि गायों को लेकर करके एक वन से दूसरे वन में विचरण कर रहे हैं। कुसुमित वन राज सुष्म भृंग द्विजकुल घुष सरह सरण महिद्रम मधुपत अवगाह्यचार्यन गा स पशुपाल बलश्चकुजवेन। जब चारों तरफ में पुष्प खिलने लगे, उस समय भौंरे मतवाले होकर एक दूसरे फूलों से गुंजार करने लगे। सुस्मित भृंग मतवाले हो गए थे, और द्विजकुल पक्षी झुंड के झुंड कलरव करने लगे। सरा सरण महिध्रम मधुपत अवग, और जिससे कि पूरा ब्रजमंडल नदियां और पर्वत गूंजने लगे उनके कलरव से। अद्भुत वृंदावन की शोभा हुई, और उसमें मधुपति कृष्णचंद्र अवगाह्य उसमें प्रवेश कर एक वन से दूसरे वन में बंसी बजाते हुए गायों को लेकर बलदेव और कोटि कोटि सखाओं के साथ में विचरण करने लगे। तद ब्रजस्त्रिया आश्रित वेणु गीतम स्मरोदयम काश्चित परोखम कृष्ण उसमें ब्रजस्त्रिया घर में बैठी थी और वो भी अपने स्वजातियों के साथ में, जैसा जिनका स्वजाति है विपक्ष वाली, तटस्थ वाली, सुहिद वाली और स्वपक्ष वाली, सब गोपियां अपने अपने दलों में बैठ करके अपने अपने घरों में बैठी हुई बंसी की तान को सुन रही हैं, मानो कृष्ण से मिल रही हैं। और अपने अपने सहेलियों को अपने अपने भावों का वर्णन करने लगी। वर्णन करने की इच्छा तो हुई, तद ब्रजेस्तिया अशुक्त वेणु गीतम स्मरोदयम, वन में बंसी बज रही है और गोपियां कहां हैं, घरों में, किंतु भाव नेत्र से सुन रही हैं। क्वचित परोक्षम कृष्णस्य सखिकव्य अनुवर्णय, कृष्ण तो हैं दूर और ये सखियां परस्पर एक दूसरे से उस बंसी की तान को और कृष्ण के रूप मधुर रूप को एक दूसरे से वर्णन करने की चेष्टा करने लगी, किंतु नहीं कर सकी। तद वर्णितुम आराब्धा स्मरन्त्या कृष्ण चेष्टितम, ज्यों ही वर्णन करने की चेष्टा की उस समय गोपियां मनी मन में कृष्ण की चिंता करते, कैसे हंसते हैं, कैसे हमारे तरफ में इशारा करते हैं, कैसे मधुर बोली बोलते हैं, कैसे उनसे दिलगी इत्यादि करते हैं, वो सब बातें उनके हृदय में जग उठी और काम मिलन की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि ना सकन ना कर सके। स्मर बेगे ने विक्षिप्त मन से, विक्षिप्त माने पागल हो गई, उन्मत्त हो गई। उस समय में उनके रूप का वर्णन कर रही हैं अथवा सुखदेव गोस्वामी उनके रूप का, वो तो पागल हो गई। तब ये बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोपवृंदई वृंदारण्यम सबधरमणम प्राविशत गीत कीर्ते। बरहा पीडम मयूर के पुच्छ सिर पर धारण कर रखा, नटवर बपू मानो अब स्टेज पर पधार करके, नटवर सुंदर नृत्य करने वाला नटवर अथवा नटवर जो विवाह करने के लिए जा रहा हो उसको जैसे सजा दिया गया हो, ऐसे ये कृष्ण एक कान में कभी इधर कभी इधर मतवाले हो करके कनेर का फूल लगा रखा है, विभ्रत वास हो और सुंदर वसन पीतांबर श्याम वर्ण, मेघ के ऊपर में बिजली जैसा पीतांबर, कनक कपिशऊ वैजयंती माला और पांच या सात रंगों की माला गले से झूलती हुई लंबी पैरों तक पधार रही, रंध्राण वेणु रधर सुधया और अपने अधर सुधा को वेणु के छेदों के माध्यम से मानो ब्रज में भेज रहे हैं, जो कि सारे संसार में कोई स्थान नहीं देखी, बैकुंठ में भी नहीं, द्वारका मथुरा में भी नहीं, ब्रज में भी कहां, सब जगह नहीं, मातृ स्थानों में, सखा के स्थानों में कहीं नहीं जाकर के केवल मात्र गोपियों के कानों में पहुंची। पूर्यान गोप बिंदे और गोप सखा लोग उनकी जसा कृति इत्यादि का गान कर रहे हैं। शबद रमन 19 प्रकार के उनके जो चरणों में चिन्ह है भगवान के, वो पृथ्वी पर लग करके उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं और सखा लोग चारों तरफ से उनका गान कर रहे हैं। इति वेणु रवंग राजन सर्वभूत मनोहरम सुत्वाप जस्त्रिय सर्वा वर्णयंतो हिरे हिरे। इति वेणु रवंग राज, गोपियों ने ये वेणु राज सुना, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसे कृष्ण के रूप को देखते हुए और उनकी वेणु को सुन करके सर्वभूत मनोहरम, सब प्राणियों के लिए मनोहर है होने पर भी सबके लिए कामप्रद नहीं, केवल गोपियों के लिए ही। सुत्वा ब्रज स्त्रिय सुनकर के ब्रज स्त्रियां सर्वा वर्णयंतो हिरे, पुनः पुनः एक दूसरे से वो वर्णन कर रहे, क्या वर्णन कर रहे, अक्षमतां फलमिदं न परम विदम। बोलो तो थोड़ा बोलो अक्षमतां। না মনে থাকে তো এটা নিয়ে নি,
so we've just heard how Krishna gave causeless mercy to Kaliya, but still there was some cause, and it was Kaliya's relationship with his wives who were pure devotees. Now Sri Sukadeva Goswami, Goswami described the autumn season. Because after the monsoon, then the disturbance in the waters has settled. Therefore, all the waters are very now stable and clean. That time of day is very pleasantly warm, and the night time is also cool by the moon. So very nice atmosphere is there all round. In all directions, the trees are blossoming, and the birds are moving from tree to tree and forest to forest. The river Yamuna is nicely swollen with clean water, and on all directions, lotus flowers are blooming. Thus, the breeze carrying this heavy pollen of the lotus flowers is moving in all directions, creating a very charming atmosphere. At that time, Krishna, with thousands and thousands of cowherd boys and cows, moves from forest to forest. In the same way that Krishna moves here and there, the bees, also maddened by the taste of the pollen, move from flower to flower. And the different types of birds are making a sound, and the echo of their singing is reverberating throughout the different forests and mountains of Vrindavan. At that time, Krishna, associated with Balaram and playing the flute, are moving with cow grazing, and the gopis with their own sapaksha, with their own sapaksha friends, with those gopis of a like mind and disposition, are grouping together and in their houses, with the eyes of devotion, with their moods, they are hearing the sound of Krishna's flute, and they are feeling like we are meeting with Krishna. One gopi is trying to explain to her friends what she is experiencing, but she cannot, because the desire to meet Krishna has arisen so forcefully in her that she cannot speak. They are completely absorbed in thinking of Krishna, how he is laughing, how he glances, and how he enjoyed pleasant talks with them. Thus, desire to meet Krishna became so forceful they became like mad. And you can think also, Sri Sukadeva Goswami also becoming mad, described that verse, just like an actor on the stage, Krishna is dressed like the best of dancers, and he is attracting the mind of all. Or Ratavana means, just like a room was very beautifully decorated on the day of his marriage, Krishna appears like that. He is moving here and there like a maddened elephant. Sometimes he maddened by different types of moods. Thus, sometimes he wears a flower in this ear, and sometimes he wears a kalyan flower in the other ear. When he's pitambara across his chest, it looks like a lightning streak has come across a black cloud. Around his neck, he wears a vajanti mala composed of 5 or 6 different colored flowers, which hangs to his feet. And the neck of his lips is escaping through the different holes of his flute. But where will that sound go? Where will it rest? It has nowhere to rest in Vaikuntha, what to speak of this material world. Therefore, the only place it can go is not even the ears of those who experience Vatsali Ras or Sakya Ras, simply it rests in the ears of the gopis. That time the suckers surrounding Krishna are singing Kanaya Lal Vijay Ho, singing his glories. And Krishna's feet, which are marked with 19 different symbols. By these feet, he is impressing the earth, therefore making the earth fortunate and beautiful. Thus, seeing Krishna's beauty at this stage, all moving and non-moving entities become maddened.
कृष्ण के प्रति अनुराग होती है ऋषि को वर्णन किया जाता है बिना अनुराग के कृष्ण से मिलन नहीं होता या अनुराग के बिना मिलन नहीं होता अनुराग से पहले जो है एक मिलन से पहले जो अनुराग दिखाया जाता है उसी को पूर्वराग कहा जाता है कृष्ण से मिलने के ब्रजगोपियों के अंदर में किस नाम का उत्पन्न था जो जागृत हुई उस समय कृष्ण की वंशित उत्कंठ में वर्णन करती अरे सखियों अच्छताम फल वेदम न परम विदाम सख्य पशुनानु विवेशय तुर्वयस्वै भक्त्रं ब्रजे ससुतयो रणुवेणु जुष्टं जैर्व निमित इन आंखों का फल कृष्ण दर्शन से अधिक और कुछ है ये तो हम नहीं जानते इस जीवन में यदि कृष्ण दर्शन नहीं हुआ श्याम सुंदर की परम मनोहर मधुर रूप रूप माधुरी गुण माधुरी लीला माधुरी विशेषकर वृंदावन में प्रवेश कर ब्रज गोपियों के साथ में तथा सखाओं के साथ में क्रीड़ा भी यहाँ करते और ब्रज गोपियों के साथ में उसमें भी विशेषकर जब विश्वभान कुमारी राधा जी के साथ में सम्मिलित हो करके युगल सर्व में विराजमान होते हैं और उनकी जो बक्सी माधुरी जो सभी को चमत्कृत कर देते हैं और सभी को आकर्षित करते हैं मोहित कर देते हैं ऐसी श्यामा श्याम का यदि दर्शन नहीं हुआ तो इस जीवन में क्या काम परुपकार घूमे वाज से नयन रवि जी कारण नेत्रों से दर्शन नहीं होता तो कविया बात भी करते हैं उनके मस्तक पर भी बज्र गिरे उन नेत्रों से क्या इसलिए चलो सखी हम वृंदावन को चले वहां जा करके जबकि जहां शुद्ध सुता अर्थात राधा कृष्ण की उस परम फल का मिलन और उसमें जो सेवा का सौभाग्य ये हम प्राप्त इसलिए प्रजा को भी उस अनुराग में भरी हुई और भी कहती है आज हम लोग धन संसार में संसार धर्म को बड़ा मान करके खुशी में हम पड़ी हुई है जब हम वृंदावन को चले वहां जाकर के एक बार भी उनका दर्शन हो जाएगा और प्रकाश हमारे नेत्रों से जब एक बार हमें देख लेंगे तब हमारा घर संसार दुनिया भर के धर्म स्वर्ग तिलांजलि जलांजलि हो जाएगी इसलिए चलो सखी हम वृंदावन को चले देखो प्रभु हे गोपियों वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी तीनों दुर्मलता कृष्ण के प्रति कितना अनुराग धारण करते हैं वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी दुर्मलता है सभी कृष्ण का स्वागत करते हैं जब भी वृंदावन में प्रवेश करते हैं तब उस समय वृक्ष लताए इस तरह से स्वागत अभिनंदन करते हैं कि हमारे घर की अतिथि और हमारे इष्टदेव देवता के रूप में इसलिए सिर झुकाए हुए नतमस्तक हो करके फल पुष्प आदि से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और अंत में उत्फुल्लित हो जाते हैं और जब वहां से निकल के दूसरी जगह चले जाते हैं तो वे मुरझाए हुए बड़े विरह में विचलन हो जाते हैं इसी प्रकार जितने भी पशु पक्षी हैं वे सब चारों ओर से घेर कर कृष्ण को देखते हैं निहारते हैं आनंद अनुभव करते हैं
गावस्य कृष्ण
इस प्रकार धन्नास्म मूढ़गतोऽपि हरिण्येता वृंदावन की जो हरिणियां ये कितने सौभाग्यवती हैं धन्य हैं मूढ़गति पशु जाति के होकर के भी कृष्ण सार हिरणों को आगे करके उनके साथ चलते हुए कृष्ण के चारों ओर से घेर लेती हैं उन्हें दर्शन करती हैं जो कि आकार प्रणीताम सहज कृष्ण सारा पूजाम दर्द विरचिताम प्रणया बलो कई पशु जाति के होने पर कुछ कर्म नहीं सकती परंतु प्रणय नेत्रों से विस्फारित नेत्रों से हृदय के मान प्राण हृदय सब कुछ कृष्ण के चरणों में समर्पण कर उनकी पूजा करती है परंतु हम मनुष्य जाति के हो करके भी उच्च कुल में जन्म ले करके भी हमारा ये सौभाग्य नहीं इनका सौभाग्य कितना है कि सहज कृष्ण सारा जीवन में कृष्ण को ही सार बनाया हमने घर संसार को पुत्र परिवार को अपना बनाया और उसी को सार माना परंतु इन लोगों ने कृष्ण को ही सार सर्वस्व मान करके पशु जाति के रूप करके भी ये धन्य है और हम अधन्य होकर के पड़े हुए हैं यावत् कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम जो कि गौ है गाय जी जब कृष्ण की वंशित ध्वनि सुनती है उस समय कान ऊंचा करके मुंह उठा करके कान खड़ा करके एक चकी लगा करके देखती रहती है तो उस समय मुंह के घास मुंह में ही रह जाता है क्योंकि कृष्ण ने वंशी ध्वनि के द्वारा जिनके चित्त मन को चुरा लिया है इंद्रियां विवश होकर के कुछ काम नहीं कर सकती इसलिए घासे न तो अंदर जाती है और ना ही बाहर गिरती मुंह में लगी हुई है आंखों से वास्तव प्रेम के कारण आंखों से आंसू बहाती हैं ऐसे बछड़ों की भी स्थिति है बछड़े जो दूध पी रहे थे वो दूध पीना बंद कर दिया मुंह में दूध भरा हुआ है एकदम चित्र पुतली का जैसे कोई पुतुल है, कोई मोती के मूर्ति हो, इसी तरह से निर्जीव जैसे कृष्ण की ओर देखने लगते हैं, लगती है। यह स्थिति गायों की। इसी प्रकार वृंदावन की नदियां, जमुना जी और नदियां, सरोवर आदि, उनकी क्या दशा है? नद्य तदा तदुपधारयमुकुन्द गीतम् आवर्तलक्षितमनुभव कवेरा आलिङ्गन स्वगीत मूर्मिभुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलान् कमलोपहारा नद्य सदा तरुपधार जमुकुंद गीतम। जमुकुंद की गीत वंशी ध्वनि को श्रवण किया, मुगम मुक्ति सुखम पुषितम कृत्वा भक्ति रसम प्रेम्यो भक्त्यो प्रगच्छत् इति मुकुंद। मुक्ति सुख कभी अत्यंत खुशी रूप में तिरस्कार करके भक्ति सुख प्रेम को प्रदान करते हैं, ऐसे जो मुकुंद। जहाँ वृंदावन में कुंतमेव प्रस्फुटितम मुखम यस्य, गुरु जी के वचन में जो भी कुंत पुष्प की तरह खिले हुए जिनके मुखमंडल आनंद में विहार कर रहे हैं, ऐसे समय में वंशी की ध्वनि को सुन करके नदी जैसी जल पदार्थ हो करके ये नदियां स्थावर में जा करके भी जो नदियां कृष्ण की समुद्र के लिए अभिशाप कर रही हैं, ऐसे जमुना आदि नदियां वे कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुन करके उनकी धारा रुद्ध हो जाती है, पानी फूलने लगता है और उसमें भ्रमर पड़ जाता है, जिसमें खिले हुए कमल पुष्पों को उखाड़ उखाड़ करके जमुना जी किनारे पर फेंक देती है। जहाँ वृंदावन के सेवा कुंज में निकुंज वन में श्याम सुंदर विराजमान है और बंसी बजा रहे हूँ, उनके चरण को छूने के लिए, पुष्पों को समर्पित करने के लिए किनारे को तोड़ती हुई जमुना जी कमल पुष्पों को ऊपर फेंक देती है और कहीं अपने मित्र पवन देव के कारण जो कि कृष्ण के चरण तुलसी आदि पार करके वे शांत भाव धारण करती है। इस प्रकार नदियां भी उफनती हैं, उछलती हैं, आलिंगन स्वगीत उर्मि भुजै मुरारे अपनी उर्मि लहरिया रूपी भुजाओं के द्वारा कृष्ण के चरण कमल को अपने हृदय में लगाना चाहती हैं। इस प्रकार जमुना आदि नदियों की दशा। इसी प्रकार वृंदावन में वेरुण
पूर्णा पुलिंद उर्गाय पद।
हाँ, तो इस प्रकार वृंदावन में देखो ये बेनु जो कि स्त्री जाति के हो करके भी जो वंशी हैं, बेनु और मुरली ये सभी स्त्री जाति के हो करके भी हम सब प्रजोपियों के सामने कैसे पौरुष
बेनु पुरुष जाति, मुरली स्त्री जाति,
तो वंशी मुरली ये स्त्री जाति के हो करके भी और पुरुषायित भाव धारण कर हमारे सामने कितना पौरुष दिखाती है कि देखो हमारा कितना सौभाग्य है, हम कृष्ण के आदर्श का पाठ कर रही है और तुम लोगों को कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार ब्रजगोपियों को अंगुलियों से ठुकरा रही है, देखो इनका कितना सौभाग्य है कि वृंदावन के बांस झाड़ की बात ही क्या, और भी जितने वृक्ष आदि हैं वे सभी अपना गौरव मानते हैं और नदियां भी प्रसन्न हो जाती हैं कि हमारे जल से ये सिंचित होकर के बड़े हुए हैं और आज कृष्ण के अधिक सुधा का पान करने का इन्होंने सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हमारे वंश कृतार्थ हो गया, हम सभी कृतकृत हैं, ऐसे आनंद मानते हैं। और हम कहां दुर्भाग्य यहां हम पड़े हुए गए। इस प्रकार गोपियां अल्लाह भरे नेत्रों से कृष्ण की वंशी ध्वनि श्रवण कर और कृष्ण का चिंतन करके उन्हीं में खोई हुई है। गोपियां कहती हैं, देखो वृंदावन में ये जितने भी देवता लोग हैं आकाश मार्ग में विमान में भ्रमण करते करते कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन करके अपने देवियों के सामने ये देवता लोग भी मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं कि अहो ब्रजगोपी बन करके जन्म हो जाए और कृष्ण के इस वंशी ध्वनि अधर सुधा लीला माधुरी ये सब पान करने को सौभाग्य मिल जाएगा। और देविया देवताओं के सामने अपने अपने पति के सामने वो तो बेहोश हो जाती हैं, उनके वस्त्र भी शरीर से खिसक जाते हैं और देविया कृष्ण के प्रति मोहित हो जाती हैं। इस प्रकार कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन करके कौन नहीं उन्मत्त हुए हैं, यहाँ तक कि आकाश के बादल भी मंद मंद और फूलों के कान जैसे इसी तरह से रिमझिम बारिश के द्वारा कृष्ण का कितना स्वागत करते हैं। तो हम क्यों यहाँ पड़े हुए हैं? हंताय मद्रिगवला हरिदास वर्य जग राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमो मानम तरो दिशा दुर्घनयोर्सयोर्य पानिया सुजव सकंदर कंदमूर्ति महापुरुष की कृपा के कोई आश्रय के बिना कभी कृष्ण के प्रति कृष्ण की कृपा नहीं मिलती। चलो आज हम गिरिराज जी का आश्रय लेते हैं, हरदेव जी का दर्शन कर मानसी गंगा में स्नान कर गिरिराज के आश्रय में चले। जो गिरिराज जी राधा कृष्ण की प्रेम अनुभव से सेवा करते हैं, जिनकी कंदरा कंदराओं में लीलाएं होती हैं, कहीं भी कोई झाटी झलक तो मिल जाएगा और उसी से हमारा जीवन कितार्थ तो हो जाएगा। चलो सखी हम गिरिराज जी के आश्रय में चले। इस ब्रज विपिनी के वृंदावन के जो पुलिसी कन्याएं हैं, जो जंगल में लकड़ी बिनने गोबर बिनने के लिए जाया करती, वो सब जबकि वृषभन नंदिनी के चरणों में जो कुमकुम है, उस कुमकुम को जो घासों पर लगी हुई है और उस कुमकुम को देख करके कृष्ण और राधे विभव होकर वो सब अपने सिर पर लगाती हैं ये कृष्ण के चरणों के प्रसादी कुमकुम। इस प्रकार वे उसे पा करके कृतकृत हो जाती हैं, कृष्ण और राज में भर जाती हैं। और वो वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी तीनों गुलमलता कुलिंदी कन्याएं सब का कृष्ण के प्रति कितना अनुराग हमारे अंदर तभी की उत्कंठा नहीं, कोई अनुराग नहीं, कोई आसक्ति नहीं, हम कैसे निर्जीव बन करके जी रहे हैं। इस जीवन में यदि कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं हुआ इस जीवन इसलिए चलो सखी उस वृंदावन में चले और कृष्ण अनुराग में खुदा भर जाए, कहीं श्यामा श्यामता दर्शन मिल जाए। इस तरह की कथाएं हैं और भी कथाएं हैं, तो मैं ये रखता हूँ। अच्छा लोग
You cannot do? And you? Now you? थोड़ा उल्टा पलटा हो जाता है, देख सुन करके ठीक से इसको पढ़ करके नंबर्स के अनुसार में बोलना है। हाँ 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 ये सब नंबर से होना चाहिए, भाव होना चाहिए। थोड़ा सा हमारा वेणु गीत पढ़ो तब आएगा। अरे ओम प्रकाश जी वहाँ क्यों बैठे हैं, मन मार करके इधर में आइए, पधारिए, विराजमान होइए, सुशोभित होइए। ओ तकत नहीं है।
So here the gopis pura, the gopis pura rag has been described here by Sri Sukadeva Goswami. Pura rag means that anticipation the gopis experience before actually meeting directly with Krishna. So hearing the sound of Krishna's flute, the gopis pura rag increases to its topmost limit, and the gopis began to glorify the effect of Krishna's flute on all moving and non-moving living entities. So, Akshantantam Phalidam Nakhantam Vidam. Oh, the gopis say, the fruit of having these eyes is to have darshan of Anusutayo. Here can mean Krishna with his older brother, Balaram. This is one explanation. Anusutayo means the who both the controls of Vrindavan, who are they, Nanda Maharaj and Vrishabhanu Maharaj. Therefore, the fruit of these eyes is to see those two, Radha and Krishna, together, to have darshan of Radha Krishna Yugal Sarika. This is having fruit of these eyes. Therefore, those eyes which have not seen Krishna, those eyes are about as useful as the eyes of a peacock feather, because no value. Therefore, the gopis, because their bhava is so high, therefore they are seeing that each moving and non-moving living entity of Vrindavan is in a superior position to them. Therefore, they have a great greed to taste Krishna's Rupa Madhuri, Venu Madhuri, Lila Madhuri, and Prem Madhuri. Therefore, one gopi is saying to another, hey Sati, our birth, even though we've taken birth in this Gop Jati, in this Gop dynasty, and even though all births, the human birth is highest, still our human birth is useless because we cannot meet Krishna. Therefore, Krishna's flute, sound, enters like a thief into the hearts of the gopis, breaking all their different types of shyness and different types of restrictions that normally prevent them from meeting Krishna. Therefore, the gopis are lamenting, alas, our human births are useless because we cannot get any chance to see Krishna. Therefore, even Lord Brahma, in his meditation on the bank of the Chisaga, he could see Narayan and everything. Therefore, what to speak of the gopis? Therefore, gopis are such a great distance from Krishna, but they have the eyes of devotion. Therefore, within their hearts, it is as if they are seeing Krishna directly at Govardhan. And how the effect of Krishna's food is changing the heart of everyone, one gopi is explaining to another gopi. This is called Sivanugi. Therefore, the gopis are explaining, alas, just in the attachment, all the moving and non-moving living entities have to Krishna. That time Krishna is decorating himself with different types of branches, different types of twigs, different minerals of Govardhan. That time he looks like Natabala, the best of dancers. Just like a dancer on a stage, Krishna is dancing for who? Everything that Krishna is manifesting here in Vrindavan is for the happiness of his devotees, especially the Braja Gopis. Therefore the Braja Gopis are saying, alas, just like a big pile of honey in a jar, our lives are useless because we can see that honey, but we cannot lick it because we have so much bondage, so much obstacles between us and meeting Krishna. But just see the deer of Vrindavan, they are much more fortunate than us. Normally deers are most foolish. But the gopis say, alas, everybody criticizes the deers, but actually they are most fortunate. Even though I've taken birth in a very foolish dynasty of the deer, still they have the chance to meet Krishna. And they are Krishna Sahara. Because those deers have gone on to Krishna with their husbands. Therefore their husbands are not causing any obstacles towards meeting Krishna. But alas, we are most unfortunate. Because our husbands are always causing so many obstacles to us. They are so much a bother. But those deers, by taking birth in animal species, they get a chance to go right near Krishna. Therefore, they are Krishna Sara. Krishna Sara means a black deer, but really, Krishna Sa means those deer are fortunate because Krishna is their Sa, their life, their everything. Therefore, what to speak of the cows? Even the peacocks in Vrindavan are most fortunate. Therefore, when the peacocks hear the sound of Krishna's flute, which sounds like the rumbling of a thunder, and seeing Krishna's body, which looks like a monsoon cloud, then those peacocks begin to dance in ecstasy. So in Venugir Guru Maharaj says, the peacocks are feeling very lamentation. Alas, we are in his kitchen. Krishna's playing his flute so nicely, we have no chance to give him a presentation. So just like in India, when the musicians play, people take out a 100-rupee note and do like this and give to the musicians. Therefore, the peacocks think, we should give the best thing we have to Krishna. And they give their peacock feathers to Krishna. What's a peacock feather to Krishna? From him comes millions and millions of universes. But he is so much controlled by the affection of his devotees. Krishna takes up an insignificant thing like a peacock feather and always wears it on his head. How much he is affectionate to even the peacocks of Vrindavan. So the gopis say, but our life is useless. We have so much beauty, we have our youth, we have so much love towards Krishna, but everything is useless because we cannot give it to the service of Govinda. Therefore, alas, we are most unfortunate, but even the birds are fortunate in Vrindavan. Those birds are sitting in the trees, and when they hear the sound of Krishna's flute, just like perfected yogis, they close their eyes and become stunned in ecstasy. Alas, Sakhi, even the trees in Vrindavan, not their tree is a very unfortunate bird. But no, I think that the gopis are saying, our birds as gopis is most unfortunate, because even the trees can see Krishna. Therefore, their trees, their branches, with all their flowers, is like an arti land, when they are offering everything they have to Krishna. When they see Krishna, they feel ecstasy, and all the flowers and fruits, they bow their hand and offer everything to Govinda. But hey, Sakhi, our lives are useless. We have taken birth as Krishna. We cannot offer anything to Govinda. And the trees, when Krishna leaves and goes to another forest, those trees begin to weep in separation. Alas, Sakhi, all are most fortunate, especially the Venu. Despite the fact that the Venu is a male, that Venu has the good fortune to sit directly on the lips of Krishna. Therefore, the gopis are praying.
Venu?
The gopis are saying, alas, that flute, even though born in a male dynasty, that flute has the good fortune to drink the nectar of Krishna, the Abdharma Dharasuna, Api Gopikam. Alas, that Venu is very much. The gopis begin to criticize the Venu. Mahaprabhu explains. Alas, that flute is a rascal, because he must be a rascal, otherwise, how he took birth in such a sinful dynasty like a bamboo. That bamboo is full of faults, he has many holes, he has no nectar inside him, he is completely empty. But despite having millions of faults, one gopi says, Ali Gopi, he may have millions of faults, but he is drinking the nectar of Krishna's lips. And you are not. Therefore, the gopis are saying, Bhuktes Swayam Yadavasishta. Alas, the nectar of Krishna's lips is meant only for us. With that Venu, he is drinking everything for himself. Just like if Gurudev gives one tiffin to a disciple and says, you take the tiffin much. With that disciple, in the way, eats everything and doesn't give anything for whom it's meant for, that shishya is very much decried. In the same way, the gopi is saying, the nectar of Krishna's lips is meant only for us, but somehow or other that Venu is taking everything, and the Venu, intoxicated by his pride, is saying to the gopis, gopis, I don't care for you. If you want to get the nectar of Krishna's lips, don't just criticize from behind, you should come directly in front. Therefore, the gopis are lamenting, even the flute is drinking the nectar of Krishna's flute of lips, but we are unqualified. And just seeing the good fortune of their son, the bamboo trees of Vrindavan are weeping in ecstasy, dropping honey from their eyes. And the sarova, which is like the mother, because she feeds water to the young tree. And at that time, the rivers and sarovas of Vrindavan are feeling ecstasy. Oh look, our son has the good fortune to give seva to Govinda. Therefore, alas, Sakhi, even the cows get the good fortune to get the association of Krishna. Krishna goes up to them and touches them, but we cannot get the touch of Govinda. Therefore, the cows chewing grass, hearing the nectar of Krishna's flute sound, even the cows become stunned, and the cows cannot drink their milk, all become in ecstasy. Alas, even the demigoddesses, who are flying in the sky, when they see the beauty of Krishna's form, they, despite the fact they're sitting on the laps of their husbands, those Devi goddesses feel ecstasy. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur says, when they speak of the Devi goddesses, when they see Krishna's form, they become so much anxious to serve Krishna. They feel their hair and belts loosening right in the presence of their husbands. And the husbands, when they see the beauty of Krishna's form, the husbands also desire. We wish, we feel like we could take birth as gopis to serve Krishna. Therefore, the husbands are also feeling bound. In the presence of our wives, we are feeling like we are also women. And the women are feeling embarrassed because in the presence of our husband, we also want to serve Krishna. That is the astonishing effect of Krishna's flute. Then the gopi said, Ali, without the blessings of a great soul like Govardhan, no one can serve Krishna. Your gopikāva would be to Haridas Savajo. Therefore, the best servant of Hari is Govardhan. Therefore, he is very much fortunate with Rama, Krishna, Chandra, Sparsha, Pramodaha. What to speak of the moving living entities, even the non-moving living entities of Vrindavan like Govardhan, they get the direct chance to touch the feet of Krishna. But we are unfortunate. And finally, even the outcasts, like the Pulindis, when they see the kumkum, smeared footprints of Krishna on the grass, those Pulindis, they fall and roll and take that foot dust of the gopis upon their head. That's all there. Last to me, Krishna is satisfied. Thus the gopis lamenting in their house describe the wonderful effects of Krishna's venerable.
धीरे धीरे हेमंत ऋतु आ गई। अब कृष्ण हेमंत ऋतु में गोपियां जो साधन सिद्धा थी वे हविष्यान्न खाने लगी और एक महीने तक कात्यायनी देवी की पूजा की। वे सवेरे भोर में उठ जाती, स्नान करती और बालू की कात्यायनी बनाती। कहाँ पर? चीरघाट, रामघाट के चीरघाट, वहीं पर तपोवन के पास में, वहाँ पर बालू की मूर्ति बनाती, सुंदर सुंदर फूलों से पूजा करती, हार देती, उपहार देती। इस प्रकार से कठोर भाव से एक महीने तक कात्यायनी की पूजा की और अंतिम दिन पूर्णमासी के दिन उन्होंने और सखियों को भी, श्रीमती राधिका, ललिता, विशाखा, सबको बुलाया और बुला करके तब पूर्णाहुति होनी थी, कृष्ण रण नहीं सके। बुलाया कात्यायनी को, आए कृष्ण क्यों? कृष्ण क्यों आए? कात्यायनी की पूजा, कात्यायनी आकर के व्रत देती नहीं, उस व्रत को कर रही थी कृष्ण को प्रसन्न करने की। इसलिए वो कृष्ण स्वयं आए और स्नान कर रही थी नंगे कपड़ों को घाट पर रखकर। कृष्ण ने उनको सखाओं के साथ में ले करके और पेड़ पर चढ़ गए और डालियों पर रख दिया और फिर बच्चों के साथ में हंसी दिलगी करने लगे। उसको सुन करके इनका ध्यान उधर गया, देखा जी कृष्ण ऊपर में वस्त्रों की तरफ में देखा तो वस्त्र तो है नहीं, शीत से कांप रही थी। और उस समय गोपियां कृष्ण से हाथ जोड़ करके वस्त्र मांगने लगी, पानी में रहते हुए भी। कृष्ण कहा जे मैं नहीं दे सकता, तुमने रात के समय में भी बिना वस्त्र के स्नान करके पानी के अधिष्ठाती देवता वरुण देवता के चरणों में अपराध किया है, इसलिए तुमको अपराध से क्षमा मांगनी होगी। उन्होंने क्षमा मांगा, कृष्ण कहा ऐसे नहीं, पानी से निकलो, पानी से निकल करके किनारे पर खड़े हो करके बोलो। अब तो बड़ी लज्जित हुई, कृष्ण को भला बुरा कहने लगी, यही धर्मात्मा बने हो, तुम्हारा ये ठीक नहीं, हम लोगों से ठिठोली करना उचित नहीं। कृष्ण कहा जी हम नहीं कुछ जानते हैं, तुमने अपराध किया है, ये क्षमा कराना होगा, फिर से ऐसे नहीं करना होगा। अंत में कृष्ण को देख करके प्रसन्न करने के लिए उनकी बात भी मान करके पानी से बाहर आए, कहे हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। तब कृष्ण ने गोपियों ने उनकी प्रसन्नता के लिए उसको भी स्वीकार करके और उनको प्रणाम किया। तब कृष्ण ने बर दिया कि तुम लोगों ने जिस प्रकार से मेरी आराधना की है मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी आगामी शरत काल में पूर्णिमा के समय में तुम सब लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करूँगा, इसलिए शरद में पहले दिन ये रासलीला उनके साथ भी किया। तात्पर्य इस लीला का क्या है, गूढ़ रहस्य क्या, कृष्ण चिन्मय हैं, उनकी लीलाएं चिन्मय हैं, उनके परिकर चिन्मय हैं, हम लोग चिन्मय नहीं हैं। चिन्मय सुखदेव गोस्वामी जी हैं, व्यास जी हैं, नारद जी हैं, वो लोग इसका तात्पर्य जान सकते हैं। हम लोग इन लीलाओं का जो गूढ़ तात्पर्य क्या है, कृष्ण ने उनको नंगी करके उनके सर्व अंगों को देखा क्यों किया, ये तो सदाचार के विरुद्ध है, फिर भी किया क्यों। चिन्मयी लीलाओं में ऐसे भाव नहीं होते। कृष्ण की उम्र कितनी है, 6 वर्ष के करीब, 6 वर्ष में काम नहीं होता, काम उत्पन्न नहीं होता, कम से कम तो 12-14 वर्ष के बाद में, इसलिए काम की तो कोई बात ही नहीं है। अपराकृत गोपियों का इनका काम तो है ही नहीं,
3.5-4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष,
इनमें भी ऐसा काम नहीं। कृष्ण के साथ में कोई भी बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, कपड़े भी क्यों रहे। एक लीला दिखलाने के लिए जिसको साधारण मनुष्य नहीं समझेगा, क्यों किया कृष्ण ने, कृष्ण ने किया, सर्वेश्वरेश्वर है उन्होंने किया, किंतु उस लीला का गूढ़ तात्पर्य है, चिन्मयी लीला है, इसका संसारिक लीलाओं से काम से कोई भी संबंध इसका नहीं है। इसलिए कृष्ण के और उनके बीच में व्यवधान क्यों रहे। कृष्ण ये चाहते हैं हमारे जीवन में कृष्ण के और हमारे बीच में किसी प्रकार का भाव का, कपड़े का, कुछ का कोई व्यवधान न रहे। जब ऐसा हो जाएगा, कृष्ण की प्रत्येक बात को हम मान करके उनके सुख के लिए करेंगे, तो उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए किया। टीकाकारों ने इसकी बहुत टीकाएं की हैं, काम की दृष्टि से मत देखो, इस तरह से उन्होंने ये लीला किया। इसके बाद में दूसरी लीलाएं होंगी। आप लोग अभी यहाँ से निकल करके अभी थोड़ा सा अनुकल्प करके जलपान करके ब्रेकफास्ट, और यहाँ से आप लोग सबसे पहले किल्लोल कुंड में जाएं। राधा और कृष्ण ने वहाँ पर किल्लोल किया था, किल्लोल माने क्या, बिहार किया था, और उसके बाद में ग्वाल पोखरे जाएंगे, वहां पर बहुत सी लीलाएं हैं। कृष्ण का राधा जी का चरण चिन्ह है और वो सरोवर इत्यादि है, वहां दर्शन करने के बाद में पासी नारद कुंड है, वहां पर नारद ने तपस्या करके गोपी भाव प्राप्त किया था, नारदी गोपी बने थे, वहां पर उनकी कृपा प्रार्थना के लिए हम लोग जाएंगे, और वहां से फिर यहाँ आकर के 11-11:30-12 बजे तक फिर प्रसाद पाकर के शाम को ठीक हम लोग बैठेंगे और हरि कथा आलोचना होगी। गौर प्रमानंद।
And every day for 1 month, they made a murti of Katyayani Devi and took bath early in the morning. On the last day of their vow, they invited the Nityasiddha gopis like Radhika and Lalita there. That time, Krishna came and the gopis Krishna stole all their clothes. Question comes, if they are worshipping Katyayani, then why did Krishna come? Because the gopis were worshipping Katyayani to get the association of Krishna, for the happiness of Krishna, therefore Krishna came. Krishna took all the clothes of the gopis and went into Kadamba tree, and with his small friends he was laughing. Hearing the laughing of Krishna, the gopis looked up and saw all their clothes were not there, all their clothes were with Krishna in the tree. Therefore Krishna said, You have done an offense because you have bathed naked in the river. Therefore you should become free of your offense by doing pranam. Therefore the gopi came to the arguments. You are a very religious person. How are you going to do like this to us? Please do not do. We will do pranam in the river. The Krishna said, no. You have to come out of the river because you have made offense to Varuna Dev, the demigod of the river, by bathing naked. Therefore after some arguments, all the gopis accepted and came out of the river without any clothes and did pranam to him for his happiness. Question is, and Krishna gave the benediction, I can meet with you later on. What is this lila? It's very difficult to understand because Krishna himself, his lila, his parikas are all completely transcendental and we are not transcendental. Therefore we cannot understand it very easily. But devotees like Narad, like Sukadev Goswami, who have reached the transcendental position, they can understand.
They can understand. We cannot.
Because it appears Krishna is acting against Dharma. But where's the question? There is no touch of lust in this pastime. Because despite the fact that Krishna is transcendental and Bhagavan, despite that fact, Krishna is only 6 years old. And the gopis are even less, 4 or 5 years old. So no question of lust, because lust only arises after 12 or 13 years. So even on a material platform, there's no question of lust here.
Also, lila, whether we are naked or full of
clothes,
Krishna is everywhere. So no question.
Therefore, this lila shows there should be no obstruction between us and Krishna. There should be no separateness. Therefore, this is the pastime. We cannot understand very easily. Therefore, this pastime has no relation with lust. Therefore, we should not see this with lusty intelligence. There is no question of lust in this pastime. Therefore, the gopis taught, we can do everything for Krishna's happiness, whatever he wants.
I have few more chapters in my room, white ones and beige ones, whoever, this is something, please come and have a chapter.